राजयोग शिविर के इस प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं की पहचान इस विषय पर देखेंगे। स्वयं की पहचान की आवश्यकता क्यों है? कई बार मन के अंदर ये प्रश्न आता है कि आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता क्या है जीवन में। आत्मा का ज्ञान अगर है या नहीं है तो हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, क्या अंतर होगा, क्या उससे हमारी जीवन की क्वालिटी में कोई अंतर होगा, कुछ फायदा होगा। ये अनेक प्रकार के प्रश्न मन के अंदर उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जीवन में भी हम कई कार्य बहुत कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, परंतु जीवन में कई बार ऐसे मोड़ भी आते हैं कि जब व्यक्ति भीतर से नर्वस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, और ऐसे समय में व्यक्ति को फिर से एक सामान्य जीवन जीने के लिए कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे अपने कार्य के अंदर भी कुशलता आए और अपने जीवन की क्वालिटी को भी अच्छी बना सकता है, संबंधों में भी वो बहुत सुंदर रीति से संबंधों को निभा सकता है। तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को राजयोग का ज्ञान दिया। योग शब्द सुनते ही व्यक्ति के मन के अंदर दो प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है। पहली भावना यही उत्पन्न होती है कि योग माना कोई हठ योग या आसन करने होंगे, परंतु जब भगवान ने गीता में अर्जुन को राजयोग सिखाया तो कहीं पर भी एक्सरसाइज नहीं सिखाई, कोई आसन नहीं बताए। इसका मतलब योग का भाव कुछ और है, बहुत ऊंचे स्तर का है। योग वैसे मनुष्य जीवन में होता ही है। योग का सरल अर्थ अगर देखा जाए तो योग माना संबंध। जैसे वियोग माना अलग हो जाना, ऐसे योग माना मिलन होना। मनुष्य का संबंध जब भौतिक चीज वस्तुओं के साथ है तो उसको कहते हैं भौतिक योग। मनुष्य का संबंध जब समय के साथ होता है और कोई कार्य अचानक समय पर हो जाता है तो यही कहते समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। मनुष्य का संबंध जब मनुष्य के साथ है और किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। किसी के जीवन में कोई विशेष दैविक कृपा होती है और कुछ अनायास उसको प्राप्त हो जाता है तो कहते इसके जीवन में दैवी योग चल रहा है। परंतु राजयोग माना एक सर्वश्रेष्ठ योग आत्मा का पिता परमात्मा के साथ, और ये योग करने के लिए सर्वप्रथम आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान चाहिए तो पिता परमात्मा का भी यथार्थ ज्ञान चाहिए। आत्मा के ज्ञान से हमारे जीवन के अंदर क्या परिवर्तन होगा? जीवन को देखा जाए तो ये जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए शरीर को जीने के लिए वही पांच तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। शरीर को जीने के लिए पानी चाहिए, क्योंकि ये शरीर के अंदर 60-70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही भीतर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है ये अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। तो ये पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसमें से एक तत्व भी कम हो जाए तो एक बेचैनी का अनुभव होता है। इसी प्रकार इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जीवन जीने के लिए उसे भी कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। शरीर को पांच तत्व चाहिए, लेकिन इस शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए 7 गुण चाहिए। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है। वो 7 गुण कौन से हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जिसके बिना जीवन जीवन नहीं रहता है? उसमें सर्वप्रथम है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए हमें जीवन में? आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा हमारे जीवन में? आज ज्ञान की कोई कमी नहीं है संसार के अंदर, ज्ञान अपनी चरम सीमा पर है। विज्ञान अनेकों रूप से मनुष्य को नई नई जानकारियां देता है। फिर कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि आज मनुष्य जीवन के अंदर सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, और अहंकार के कारण जीवन की क्वालिटी में कोई अंतर है या नहीं? अहंकार के कारण आपसी संबंधों में कितना टकराव होता है, कितनी गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारे जीवन की क्वालिटी कैसी बन जाती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? वो ईगो को न्यूट्रलाइज करता है, और उस कारण से व्यक्ति के जीवन के अंदर, उसके संबंधों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है। जिस अंडरस्टैंडिंग लेवल से हमारे संबंधों में सुमधुरता आती है। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ जीवन के अंदर पवित्रता की आवश्यकता भी है। पवित्रता क्यों चाहिए? शुद्धि क्यों चाहिए? कई बार हम देखते हैं किसी दो व्यक्ति की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो वो दोस्ती टूट जाती है। अगर उनसे पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन अंदर में उसका मन मैला था, हमें अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम दूर हो गए। तो व्यक्ति को अच्छा कहां लगता है? जहां अंदर बाहर साफ हो, व्यक्ति की भावनाओं में शुद्धि हो, विचारों में शुद्धि हो, व्यवहार में शुद्धि हो, वहां उसको अच्छा लगता है। अगर अशुद्धि है, इम्प्यूरिटीज है, तो वहां कभी भी व्यक्ति कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, वहां उस संबंध के अंदर क्या प्रेम पनप सकता है? प्रेम पनप नहीं सकता है। और आज हर इंसान को जीवन में क्या चाहिए? प्यार भरा संबंध इंसान चाहता है। तो वो प्रेम जीवन के अंदर स्वाभाविक रीति से आ जाए, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, जहां हो वहां ही प्रेम हो सकता है। और जहां ये तीनों है वही शांति है। नहीं तो आज मनुष्य जीवन के अंदर प्रेम न होने कारण स्वार्थ ने उसका स्थान ले लिया है, और स्वार्थ पूर्ति के लिए व्यक्ति कोई भी प्रकार के अशुद्ध तरीके जीवन के अंदर अपना सकता है। तब कई लोग देखते हुए यही कहते हैं, आज स्वार्थ की ही दुनिया है, और इसीलिए मनुष्य जीवन में एक टेंशन बना रहता है कि पता नहीं इस वक्त ये व्यक्ति के मन के अंदर कौन सा स्वार्थ होगा जिसकी पूर्ति करने के लिए ये बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, प्यार भरा संबंध दिखा रहा है। तो शांति नहीं है, टेंशन बना रहता है। तो ये ज्ञान, पवित्रता, प्रेम से ही जीवन के अंदर शांति आ सकती है, और उसी शांति के आधार से ही मनुष्य जीवन के अंदर सुख का अनुभव कर सकता है। नहीं तो सच्चा सुख नहीं है। और जहां ये बातें हैं वही जीवन के अंदर आनंद है, जो जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है। इसीलिए व्यक्ति जब एक दूसरे की खुश खैराफत पूछता है तभी भी क्या कहते हैं, आनंद मंगल हो। लेकिन आनंद और मंगल जीवन में अनुभव करने के लिए ये बातें आवश्यक है। अगर ये बातें नहीं है तो व्यक्ति क्या कहता है, कहां आनंद और कहां मंगल। और ये बातें जहां है वहीं आत्मशक्ति का अनुभव करता है, क्योंकि ये सभी शक्तियां हैं, खाली गुण नहीं है। ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, आनंद की शक्ति, ये सब शक्तियां हैं। आज व्यक्ति के अंदर शक्ति यानी विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है। कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा, क्योंकि ये छह गुण नहीं है। तो आत्मा की वास्तविकता ये सात गुण है। जहां ये सात गुण है वहां जीवन का भी आनंद है, संबंधों में भी अच्छे अनुभव है, और जीवन जीने का मन करता है। लेकिन ये सात गुणों में से एक गुण भी कम हो जाए तो जीवन के अंदर भी बेचैनी का अनुभव होता है, और उसी कारण व्यक्ति जीवन में नर्वस हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन ये सात गुण कैसे प्राप्त करें, यही आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग के अंदर ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए मनुष्य जीवन के अंदर देखो कितना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ये बैटरी को चार्ज कैसे करें, उसका तरीका क्या है। मनुष्य ने अनेक तरीके अपनाए जीवन के अंदर ये बैटरी को चार्ज करने लिए। सर्वप्रथम तरीका अपनाया संबंधों में अपेक्षा। संबंधों में व्यक्ति ये अपेक्षा रखने लगा कि ये व्यक्ति द्वारा मुझे सुख मिले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे शांति मिले, ये व्यक्ति द्वारा मुझे आनंद मिले, व्यक्ति द्वारा मुझे प्रेम प्राप्त हो। लेकिन सोचने की बात है, जहां मेरे जीवन में नहीं है इसीलिए मैं दूसरों से अपेक्षा रखती हूं, मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी मैं दूसरों से अपेक्षा रखती हूं, लेकिन जरूर है कि उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब एक डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज कैसे करेगी। और इसलिए व्यक्ति एक दूसरे से न प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सकता है, न शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है, और तभी संबंधों में कितने टकराव होने लगते हैं। जहां वो आपसी प्रेम नहीं तो अनेक प्रकार की गलत फहमियां उत्पन्न होने लगती हैं। जरूर ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन संसार का अनादि नियम है, जो देंगे वही मिलेगा, मांगने से नहीं मिलेगा या अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होगा। लेडी डायना थी, प्रिंसेस थी, जीवन में हर प्रकार की भौतिक उपलब्धियां थी, लेकिन क्या वो अपने जीवन में खुश थी, क्या चाहिए था उसको, प्रेम की कमी महसूस कर रही थी। सारी दुनिया उसे प्यार करती थी, उसके मरने पर देखे कितने फूल चढ़े होंगे, लेकिन अपनों से प्यार नहीं। अपनों में अपेक्षा थी, उसने दुनिया को प्यार दिया तो दुनिया ने भी उसे प्यार दिया। संसार का यह अनादि सिद्धांत, जो देंगे वही प्राप्त होगा। आज कोई अगर किसी से प्रेम से बात करता है तो वो भी प्रेम से बात करेगा, लेकिन कोई गुस्से में आकर बात करेगा तो सामने वाला भी डबल गुस्सा करेगा। कोई गाली देकर बात करता है तो वो भी गाली देकर के बात करते, तो जो देंगे वही प्राप्त होगा। अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है। और इसलिए जहां संबंधों में नहीं मिला तो व्यक्ति के जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा, तब दूसरा तरीका अपनाया, कर्म करो। और इसीलिए व्यक्ति ने विभिन्न कर्म करना आरंभ किया कि कर्म करने से प्राप्त हो जाएगा। आज मनुष्य धन कमाता है, क्यों कमाता है, धन क्यों चाहिए उसे, क्योंकि सोचता है धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमा रहा है। एक करोड़पति से पूछ लो, सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे, भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। धन कमाया सुख शांति से जीने के लिए, धन आ गया सुख शांति नहीं आई। क्यों? क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का, वो तो स्थूल चीज है। कई लोग समाज सेवा करते हैं, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो, तो कहते हैं आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला तो क्या कहेंगे, अरे बहुत पॉलिटिक्स है, आनंद कहाँ। कई लोग शादियों पर जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, पूछो ये शादियों पर क्यों जाते हो, पार्टीज में क्यों जाते हो, तो कहते समाज में रहना है तो सबके साथ हमारा प्यार भरा संबंध बना रहे उसके लिए। पूछो संबंध बना तो क्या कहते हैं, अरे एक को खुश किया दो नाराज हो गए, बने कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। कई लोग गंगा स्नान करने जाते, पूछो गंगा स्नान क्यों करते हैं, कहते आत्म शुद्धि के लिए। पूछो आत्म शुद्धि हुई तो क्या कहते हैं, अगर आत्म शुद्धि ऐसे ही हो जानी थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जा करके गंगा स्नान करा देना चाहिए, उनको जेल में बंद ही क्यों रहे। अगर इतना सहज तरीका है आत्म शुद्धि का तो फिर तो और कोई हमें इतने कोर्ट में केस चलाने की या जेल में किसी को बंद करने की आवश्यकता ही नहीं। कई लोग सत्संगों में जाते हैं, पूछो सत्संग में क्यों जाते हो, कहते ज्ञान प्राप्ति के लिए। अच्छा ज्ञान आया सत्संग सुनने के बाद घर में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है वो ज्ञान भी नहीं आता है। कभी तो कई बार आजकल के बच्चे माँ बाप से यही कहते हैं, आप सत्संग में क्या सुन के आए, यही सुन के आए क्या। अगर सत्संग करने के बाद भी आपके कर्म में आपके स्वभाव में आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तो आप किस लिए गए थे। तो विभिन्न कर्म किए ये आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का माध्यम कोई बाह्य चीजें नहीं है। तब मनुष्य ने तीसरा तरीका अपनाया, भगवान को याद करो, प्रार्थना करो, वही स्रोत है, वहीं से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए लोगों ने प्रार्थना आरंभ कर दी, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, हे प्रभु तू साफ कर देना। रोज मांगते रहे, साफ हो गए, प्रेम की बूंदे प्राप्त हो गई। कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाले ने फेंक दिया और हमने रिसीव कर लिया। ऐसे मनुष्य जीवन के अंदर ये गुणों का अनुभव नहीं होता है। स्रोत वही है, वहीं से प्राप्त होगा, लेकिन मांगना ये कोई तरीका नहीं है। राजयोग हमें वह विधि बताता है कि कैसे हम अपने अंदर ये सातों गुणों का अनुभव करें। और इसलिए जब भगवान से मांगने पर भी नहीं मिलता है तो मनुष्य जीवन में इतना फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, तब व्यक्ति चौथा तरीका अपनाता है। कौन सा, इसे तो मर जाना अच्छा है तो आपघात करना चाहता है। आपघात करने वाला पीछे से लिख कर जाता है कि जीवन में बहुत दुख हो गया था या बहुत टेंशन हो गया था, शांति नहीं थी, इसलिए मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं। एक बार एक ह्यूमन बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें पूछा तू मरना क्यों चाहते थे, इतने लोगों को मारना क्यों चाहते थे। तब वह व्यक्ति ने कहा बचपन से लेकर अब तक मुझे किसी ने प्यार से बुलाया तक नहीं, ठोकर ही मिलती गई, जहां गया वहां ठोकर ही ठोकरें मिलती रही, ये कोई जीवन है, इससे तो मर जाना अच्छा है, इसलिए मरना चाहता था। उससे पूछा गया कि क्या आपघात करने से प्यार मिल जाएगा,
क्या आपघात करने से शांति का अनुभव होगा? क्या यही सही तरीका है? नहीं, आपघात करने के बाद भी मनुष्य जीवन में शांति का अनुभव नहीं होगा, उसी से सुख का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये कोई सही विधि नहीं है। और ये आत्मा को ज्यादा दुख और अशांति में जीना पड़ता है। तो फिर क्या करे? तो मनुष्य ने पांचवा तरीका अपनाया। कौन सा? दूसरे को मारो। यही दुख अशांति की जड़ है, इसको खत्म कर दो। आज दुनिया के अंदर इतना आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? वो सोचते हैं यही दुख शांति की जड़ है, वो सोचते हैं यही दुख शांति की जड़ है, इसको खत्म कर दो तो सब शांति हो जाएगी। लेकिन क्या दूसरों को मारने से शांति होगी? नहीं, ये भी कोई सही तरीका नहीं। राजयोग हमें यथार्थ तरीका बताता है कि कैसे अपने आप को उस स्रोत से जोड़ो और उसी से वो शक्ति अपने अंदर प्राप्त करो। तभी तो महान आत्माओं ने भी यही कहा, शांति बाहर नहीं है, भीतर है, भीतर जाओ। सुख बाहर नहीं है, भीतर जाओ। लेकिन भीतर कहाँ जाना है और कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है भीतर में जिससे आत्मा ये सातों गुणों से अपनी बैटरी को भरपूर कर सकता है? वास्तव में ये सात गुण भी हमें क्यों चाहिए? क्योंकि उसका हमारे स्वास्थ्य के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। कैसे? सर्वप्रथम ज्ञान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ज्ञान से ही हमारी नर्वस सिस्टम ठीक रहती है, क्योंकि वही मैसेजेस को पास करती है। इसी तरह शांति क्यों चाहिए? क्योंकि उससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहती। आज मनुष्य जब टेंशन में होता है तो उस वक्त उसके रेस्पिरेशन कैसे चलती है, उसके श्वासों की गति कैसे चलती? एबनॉर्मल। और जब रिलैक्स मूड में बैठा है तब एकदम शांत व्यवस्थित चलती है। तभी तो लोग प्राणायाम करने लिए कहते हैं कि अपनी श्वासों की गति को ठीक करो। लेकिन कोई टेंशन में प्राणायाम करता है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तभी तो पहला नियम ही यह है कि पहले अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करो। जितना व्यक्ति भीतर से रिलैक्स होगा उतना ही वो प्राणायाम भी सही कर पाएगा। वास्तव में व्यक्ति के मन के अंदर जब शांति है तो उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल ही चलनी है। दूसरा, सुख का संबंध हमारी पेट की सिस्टम के साथ है। व्यक्ति खाना खाने बैठा हो और उसी समय किसी ने आकर उसको दुखद समाचार दे दिया तो क्या एक भी चीज खाने की रुचि होगी? नहीं, सबसे पहले अरुचि हो जाती है। और अगर किसी को खुश करने लिए खाना खा भी लेता है तो भी अंदर में बदहजमा होने लगता है। या कभी खाने पर व्यक्ति बैठा हो और कोई कलह क्लेश मचा रहा हो तो क्या कहता है? अरे सुख से खाने तो दो। यानी सुख से खाने तो दो ये क्यों कहता है कि जब खाना खाने बैठे हैं तो सुख की फीलिंग होनी चाहिए, तब अंदर में सिस्टम भी हमारी ठीक कार्य करती है। और चौथा, प्रेम क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेम का कनेक्शन हार्ट के साथ है। आज मनुष्य जीवन के अंदर हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं?
क्योंकि प्यार की कमी हो गई है। व्यक्ति ने जहां विशेष विश्वास रखा है, जिसके प्रति विशेष स्नेह है, प्यार है, वहीं से जब उसको धोखा मिलता है तो पहला दर्द कहां होगा, सिर में या पेट में? छाती में दर्द हो जाता है। और आज संसार के अंदर हार्ट अटैक का रेट बढ़ता जा रहा है और भारत में नंबर वन पर जा रहा है हार्ट अटैक। जहां एक समय परिवार की फीलिंग से लोग जीवन के अंदर समृद्ध अपने आप को महसूस करते थे, आज वही परिवारों में प्रेम नहीं रहा, स्वार्थ आ गया है। और इसीलिए जब व्यक्ति देखता है कि इसने स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य किया, तो उसके अंदर एक ऐसा धक्का लगता है कि जिसके कारण उसके हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज आरंभ हो जाते हैं। और पवित्रता का संबंध हमारी पंच इंद्रियों के साथ है। आज यही पंच इंद्रियों में आसक्ति आ गई है और इसीलिए सारे सिस्टम में भी डिफेक्ट होने लगती है। कहीं देखो तो आंखों की देखने की आसक्ति है तो आंखें खराब हो रही है, कहीं कान की आसक्ति है, नॉइज पॉल्यूशन इतना है तो व्यक्ति के कान खराब हो रहे हैं, कहीं देखो तो खाने की आसक्ति है तो उसे भीतर के सिस्टम खराब हो रही है। तो ये पांचों इंद्रियों में आसक्ति आ गई है, इम्प्यूरिटीज आ गई है। और इसी तरह शक्ति का संबंध हमारे मस्कुलर सिस्टम के साथ है। व्यक्ति रोज एक्सरसाइज करता हो लेकिन समय पर किसी ने उसके विल पावर को तोड़ दिया तो उसके बाद छोटे से छोटी परिस्थिति को फेस करने की ताकत उसमें नहीं होगी। और कभी कोई नेचुरल कैलामिटीज आती है और व्यक्ति को अंदर से जीने की इच्छा है तो उस कैलामिटीज में भी कैसे वो सर्वाइव हो जाते हैं। और इसी तरह आनंद का संबंध हमारी टोटल हार्मोनल सिस्टम के साथ है। आज हार्मोन्स अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसका कारण आनंद की कमी, खुशी नहीं है व्यक्ति के जीवन के अंदर। इसीलिए तो आजकल के समय में दुनिया में लोगों ने लाफिंग क्लब्स आरंभ कर दिए हैं। विचारों को बगीचे में जाकर हंसना पड़ता है क्योंकि घर में खुशी नहीं है। और बगीचे में जाकर के हंसकर खुश होकर के घर में आए तो फिर वही बातें हो तो क्या होता है, फिर वही अंदर के हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होने लगती है। जहां ये सातों गुण है वहां शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए देवताओं के लिए दिखाते हैं कि देवताओं की कंचन काया थी, शरीर निरोगी था, कोई भी रूप से कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं थी, क्योंकि उनकी बैटरी फुल चार्ज थी, सातों गुण से आत्मा भरपूर थी। लेकिन आज मनुष्य जीवन के अंदर हर रोज कहीं न कहीं कोई न कोई दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो कैसे चार्ज करें? तो जैसे शरीर को जो पांच तत्व चाहिए उसके लिए शरीर के पास भी पंच इंद्रियां है जो उसकी पूर्ति करता है। आंखों के द्वारा रोशनी, नाक के द्वारा ऑक्सीजन, मुख के द्वारा भोजन पानी। ठीक इसी प्रकार आत्मा को जो सातों गुणों से बैटरी चार्ज करनी है उसके लिए आत्मा के पास भी तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, जिसको कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्या चीज है? मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, फिर वो सारे विचार बुद्धि के पास आते हैं, जो बुद्धि उसको समझने का कार्य करती है। इसीलिए कहावत है सोच समझ के करना, यानी एक है सोचना जो मन करता है, दूसरा है समझना जो बुद्धि करती है, और उसके बाद कर्म में आना है। जो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता, जिसको कहते हैं संस्कार। तो ये तीन आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं जिससे ही हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कैसे? मन है आत्मा की सोचने की शक्ति का दूसरा नाम। अनेक उपमाएं मन को जरूर दे दी है। किसी ने कहा तूफानी घोड़ा है, किसी ने कहा चंचल बंदर है, अनेक उपमाएं दे दी है। लेकिन मन बहुत सुंदर है, सोचने का कार्य करती है। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं मन के अंदर होते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट ने बताया है कि मनुष्य कम से कम गति से सोचे तो भी एक मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न होते हैं। सोचने की बात है, अगर एक मिनट में 25 से 30 विचार उत्पन्न होते हो तो 24 घंटे में कितने विचार होंगे? असंख्य। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको अलग किया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर चार प्रकार के विचार सारे दिन में आ जाते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार हैं जिसको कहते हैं सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, पॉजिटिव थॉट्स, जो मूल्यों के आधार पर है या अच्छाइयों को लेकर के हैं, जिसमें कोई भी प्रकार की स्वार्थ भावना ना हो। ये सब है पॉजिटिव विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, जो कोई न कोई बुराइयों के आधार पर है, कमजोरियों को लिए हुए हैं, विकारों को लेकर के हैं, स्वार्थ की भावनाओं को लेकर के हैं। ये सब है नेगेटिव विचार। तीसरे प्रकार के विचार है आवश्यक विचार। आवश्यक विचार यानी दिनचर्या में आवश्यक कार्यों से संबंधित विचार। और चौथे प्रकार के विचार है व्यर्थ विचार, कि जब मनुष्य के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचने लगता है, बीती हुई घटनाओं को याद करने लगता है, और यही सोचता है ऐसा होता था तो अच्छा होता था, ये कहते थे तो अच्छा होता, लेकिन अब तो बीत गया ना, अब क्या करना है। वो अब नहीं सोचता है, वही बीती हुई बातों को उगाड़ता रहता है, जिसको कहा वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इसलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। तो सारे दिन के अंदर ये चार प्रकार के विचार आ जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। एक दिन में अपने आप को अगर देखें कि जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग में अधिकतर हमारे विचार कौन से होते हैं चारों में से? क्या कहेंगे? व्यर्थ विचार अधिक है। दूसरे नंबर पर नेगेटिव विचार अधिक है। आवश्यक में भी कोई ना कोई स्वार्थ के बिना कोई कार्य नहीं करेगा, तो नेगेटिव और व्यर्थ विचार अधिक है। और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर चिंतन की क्वालिटी नेगेटिव और वेस्ट अधिक है तो जीवन की क्वालिटी कैसी होगी? उस जीवन के अंदर क्या शांति होगी? नेगेटिव या व्यर्थ सोचने के बाद क्या शांति का अनुभव होगा? हो ही नहीं सकता है। शांति का अनुभव करने के लिए मुझे वैसी क्वालिटी के विचार विकसित करने होंगे। पॉजिटिव विचार आज मनुष्य जीवन के अंदर ना के बराबर हो गए हैं। मनुष्य भगवान को भी याद करता है तो वहां भी बिजनेस होता है। हे प्रभु, मेरा इतना काम हो जाए तो 2 नारियल चढ़ा दूंगा। देखो, कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। बड़ा परेशान हो गया, भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी हीरे की अंगूठी अगर प्राप्त हो जाए तो मैं इतना चढ़ावा जरूर चढ़ा दूंगा। 5 मिनट के अंदर वो हीरे की अंगूठी मिल गई उसकी। तो भगवान से कहता है, भगवान वो सौदा कैंसल। ये तो मनुष्य की भावनाएं हैं कि अभी मेरी हीरे की अंगूठी मिल गई इसलिए वो सौदा कैंसल अपना। तो जहां भगवान के साथ भी पॉजिटिव फीलिंग्स न हो, सकारात्मक भावनाएं न हो, तो इंसान के साथ तो क्या होगा। और इसलिए जहां नेगेटिव और व्यर्थ विचार अधिक है, वहीं हमारे जीवन के अंदर दुख और अशांति भी अधिक है। नेगेटिव विचार क्यों आते हैं? क्योंकि सारे स्रोत जो है हमें नेगेटिव विचार प्रदान करने वाले हैं। आज व्यक्ति सुबह उठता है और सबसे पहले न्यूज़पेपर पकड़ता है। कौन से विचार मिलते हैं उसको? अच्छे विचार, बुरे विचार, कौन सी खबरें मिलती है? बुरे विचार मिलते हैं। अच्छे अच्छे विचारों की कॉलम अंदर के पेजों में आती है, अच्छे अच्छे आर्टिकल भी आते हैं, लेकिन व्यक्ति का पढ़ने का टेस्ट कौन सा हो गया है? नेगेटिव। अब जैसा इनपुट होगा वैसे ही तो प्रोसेस चलेगा, चिंतन चलेगा, और वैसे ही तो जीवन में आउटपुट रहेगा। अगर नेगेटिव विचार चिंतन करने के बाद क्या जीवन के अंदर सुख शांति का अनुभव हो सकता है? असंभव। और वो विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर कितना है? जैसा चिंतन करेंगे वैसी भावनाएं उत्पन्न होंगी, वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। विचार एक ऐसी महान शक्ति है कि व्यक्ति जो अनुभव करना चाहता है वो विचारों की शक्ति से अनुभव कर लेता है। जीवन में डर का अनुभव क्यों होता है? वैसी क्वालिटी के विचार चलाओ तो डर का अनुभव होगा। अगर डर का अनुभव कर सकते तो शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं? विचारों की शक्ति से बिल्कुल कर सकते। बार बार कोई विचार चलाते रहने से वैसी हमारी मनोवृत्ति बन जाती है, वैसी हमारी मान्यताएं बन जाती है, और फिर वो मान्यता सही होने लगती है जीवन के अंदर। विचार एक बीज की तरह है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा, और जितना उस बीज को पानी देते रहेंगे विचारों के माध्यम से ही, उतना ही वो विचार रूपी बीज वृद्धि को प्राप्त होता है और वैसे ही फल प्रदान करता है। उतनी आत्मिक शक्ति उसमें लगानी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है, सकारात्मक विचारों से शक्ति का संचार होता है, नकारात्मक विचारों से शक्ति क्षीण होती है। और जितना ही नकारात्मक और व्यर्थ विचार चलाने लगो उतनी आत्म शक्ति क्षीण हो जाती, इसीलिए बैटरी डिस्चार्ज होती है। हाँ, कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि आज से सुना माना कल से पॉजिटिव विचार आरंभ हो जाएंगे। नहीं, जागृति अवश्य है लोगों के अंदर कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन वो दूसरे को सलाह देने तक है ना। कोई नेगेटिव सोच रहा होता है तो हम उसको अच्छी सलाह दे सकते हैं कि क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना। लेकिन जब हम नेगेटिव सोचने लगते हैं और यह व्यक्ति हमें आकर के कहने लगता है, अरे हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे, अभी आज तुम नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, तो क्या कहते हम? अरे मेरी बात ही अलग है, तेरी बात ही अलग थी, तेरी बात में तो आज भी हम कहते तुम नेगेटिव सोच रहा था, लेकिन हमारी तो परिस्थिति अलग है ना। यानी हम कभी ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं, ये हमसे भी गलती हो रही है। नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सोचने की विधि पता नहीं। सारा दिन हम ऐसे वातावरण के अंदर ऐसे माहौल में जीते हैं जहां हम नेगेटिव खबरें ज्यादा मिलती है, और इसीलिए वही अंदर में जाती है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का सोर्स कितने हैं? बिल्कुल ना के बराबर। न्यूज़पेपर लो, नेगेटिव खबरें, किसी से भी बातचीत करो तो लोगों के पास बातचीत करने का भी टॉपिक क्या है? नेगेटिव। ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, ये समस्या आ गई, ये परिस्थिति आ गई, तो नेगेटिव इनपुट्स ही तो मिल रहे हैं। आध्यात्मिकता यही खूटती कड़ी है, क्योंकि यही एक स्रोत है जहां से हमें पॉजिटिव बातें प्राप्त होगी, सकारात्मक चिंतन मिलेगा। लेकिन ये आध्यात्मिकता न होने से ही आज जीवन के अंदर नेगेटिविटी विशेष रोल प्ले कर रही है, विशेष अपना पात्र निभा रही है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा हमारे जीवन में? एक सकारात्मक चिंतन का स्रोत प्राप्त होता है, जिससे हम आत्मिक शक्ति को जमा कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा, थोड़ी धैर्यता रखनी पड़ती है, और जितना अपने चिंतन के उसके विवेक को मारा, और जब विवेक को ही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो फिर मनोबल भी क्षीण हो जाता है, वह आत्मशक्ति भी नहीं रहती है। इसीलिए व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और आज के संसार के अंदर वो दुविधा की स्थिति अधिकतर रहती है। ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति में इंसान जीता है। वो अंतर चक्षु से व्यक्ति क्या करता है? सबसे पहले वो अंतर चक्षु के द्वारा वो हर बात को स्पष्ट विजुअलाइज करता है, देखता है, फिर समझता है, फिर अपना तर्क चलाता है, विश्लेषण करता है, परखता है, और फिर निर्णय देता है। और देखा गया है कि जब जब व्यक्ति जीवन के अंदर सही निर्णय लेता है, तब तब उसको एक सुकून का अनुभव होता है, और जब जब व्यक्ति ने गलत निर्णय लिए हैं जीवन में, तब तब उसका कॉन्शियस उसको बाइट करता है, उसका अंतर उसको खाता रहता है, अंदर ही अंदर जैसा है, वो बात उसको परेशान करती रहती है, सुकून का अनुभव नहीं होता है। भले स्थूल में प्राप्ति कितनी भी हो जाए, लेकिन अंदर में सुकून नहीं है। तो इसलिए विवेक के आधार से सही निर्णय लेना जीवन में, हर बात को यथार्थ रीति स्पष्ट समझते हुए निर्णय लेना, वही व्यक्ति की बैटरी को चार्ज करता है। और विवेक को जागृत कैसे कर सकते हैं? फिर से आध्यात्मिक ज्ञान वो विवेक
को जागृत करने में मदद करता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि उसी से ही जीवन के अंदर जो दुविधा की स्थिति है वो बनने लगी है। आज अच्छे अच्छे समझदार लोग भी जब दुविधा में होते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, किसी का आधार लेते, आप क्या समझते हैं, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति ने अपनी बुद्धि के आधार से निर्णय दिया और फिर कुछ गलत हो जाता है, नुकसान हो जाता है, और किसी ने आकर पूछ ले, अरे आप तो बड़े समझदार थे, आपसे ये कैसे हो गया, तो क्या कहता है उस वक्त, अरे ये मेरी बुद्धि का कमाल नहीं, इसकी बुद्धि का कमाल, अरे इसकी बुद्धि पर क्यों चले जब आपके पास इतनी अच्छी बुद्धि है, तो कहते उस समय वो दुविधा में थी ना, काम नहीं कर रही थी। और इसलिए व्यक्ति जीवन में गलत निर्णय लेते और फिर वो दुख शांति का शिकार बनता है। उसके बाद जब कर्म में आओ तो कर्म आत्मा के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। तो संस्कार कोई एक प्रकार के नहीं है, जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनाता है या हमारी मेमोरी में चला जाता है, स्मृतियां हमारी बनने लगती है। हर इंसान के अंदर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, इसलिए एक व्यक्ति न मिले दूसरे से, हर व्यक्ति भिन्न है। वो 5 प्रकार के संस्कार कौन से? सर्वप्रथम संस्कार है अनादि संस्कार। जब आत्मा ईश्वर के धाम से संसार में आती है तो उस समय उसकी बैटरी फुल चार्ज होती है, वो अनादि संस्कार उस वक्त रहते। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना शुद्ध और पवित्र है, जब सोया हुआ है तो कितना शांत है, नींद में अगर मुस्कुराता है तो कहेंगे कितना सुख का अनुभव कर रहा है। महात्मा समान उसको ज्ञानी कहते हैं। तो बैटरी फुल चार्ज है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दूसरे प्रकार के संस्कार दिखाई देने लगते हैं, वो है पूर्व जन्म का संस्कार। कोई आत्मा कहाँ से आती है, कोई आत्मा कहाँ से आती है, तो उस जन्म के संस्कार को भी साथ ले आती है। कई बार देखा जाता कि जब पूर्व जन्म के संस्कार का उदय होता है, छोटे बच्चों के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है कि 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लगता है या 5 साल का बच्चा शास्त्र के श्लोक बोलने लगता है, तो कहते हैं उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का उदय हो गया। अब उसी में उदय हुआ, बाकी सब में नहीं हुआ? नहीं, सब में होता है, लेकिन इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। किसी में बहुत पावरफुल इंटेंसिटी से बाहर आते हैं तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, किसी में स्लो इंटेंसिटी से कार्य कर रहे हैं तो उस वक्त समझ में नहीं आता है, और उस वक्त व्यक्ति की बुद्धि काम करना बंद कर देती है जिस समय पूर्व जन्म के संस्कार इंटरफियर करते हैं। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार, माता पिता द्वारा प्राप्त संस्कार, बाप दादा के संस्कार। एक बार एक बच्चा बहुत झूठ बोलता था, कई बार हमने उसको देखा झूठ बोलते हुए। एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा तुम झूठ क्यों बोलता है, तो हंसने लगा, जानता था खुद भी झूठ बोलता। मैंने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि देखो झूठ बोलने से तुम्हें क्या मिला, कहा कुछ नहीं, तो फिर क्यों झूठ बोलना चाहिए, तो कहने लगा बस ऐसे ही निकल आता है। कुछ कहानियां सुनाई, कुछ किस्से सुनाए, कुछ उदाहरण बताए उसको कि झूठ बोलने से तुम अपना व्यक्तित्व कैसे बना रहा है। बच्चा समझदार था, मेरी हर बात को समझ रहा था अच्छी तरह से। आधा पौने घंटे के बाद मुझे कहता है ठीक है आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा प्रॉमिस करो कभी झूठ नहीं बोलोगे। कहता प्रॉमिस करता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक बुजुर्ग भाई खड़े थे, हमारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना उनको हंसी आ गई। मैंने पूछा आप क्यों हंसे, तो कहा दीदी ये प्रॉमिस जो किया ना ये भी झूठ है। भाई उसने समझ के प्रॉमिस किया, कैसे कहते आप झूठ है। कहा उसका दोष नहीं, उसका बाप भी है ऐसा ही है, और उसके दादा को भी मैंने देखा था वो भी ऐसा ही था। झूठ बोले बिना इनका खाना हजम नहीं होता है, बिना कारण से भी ये झूठ जरूर बोलेंगे। तो ये खानदानी संस्कार। चौथे प्रकार के संस्कार है संघ के प्रभाव में आकर के इस जन्म में जो हम नए संस्कार क्रिएट करते हैं। कई अच्छे घर के माँ बाप के बच्चे होते हैं और कहीं हॉस्टल में कहीं बुरे संगत में जब लग जाते हैं और बुरा कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, माँ बाप को जब पता चलता है, उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करते बेटा ये संघ छोड़ दो ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, वो माँ बाप को छोड़ने लिए तैयार हो जाता है संघ को नहीं, इतना परवश हो गया है। और पांचवे प्रकार के संस्कार है दृढ़ता के संस्कार, कि व्यक्ति एक बार कुछ ठान ले बस उसको करके छोड़ता है, दृढ़ता उसके अंदर आ जाती है करने की। तो ये पांच प्रकार के संस्कार होने कारण एक व्यक्ति न मिले दूसरे से, हर व्यक्ति भिन्न है, हर व्यक्ति का जैसा संस्कार वैसा स्वभाव नेचर, और जैसा नेचर वैसे फीचर्स। आज दुनिया के अंदर करोड़ों मनुष्य है लेकिन एक के फीचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का नेचर न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का संस्कार न मिले दूसरे से। अनादि संस्कार जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति जीवन में बढ़ता है वैसे वैसे वो अपनी आत्मा की वास्तविकता से दूर जाने लगता है और बुराइयों को जीवन के अंदर, कमजोरियों को जीवन के अंदर धारण करने लगता है। मेडिटेशन माना क्या, एक यात्रा, मन की यात्रा है कि अपनी वास्तविकता की तरफ आने की एक यात्रा। जो व्यक्ति के अंदर ये गुण के बदले कमजोरियां आ गई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष छल कपट आलस भय, उसके बाद धीरे धीरे व्यक्ति वापस अपने अनादि गुणों में जब मन को स्थित करने लगता है तो वो जागृत करता है, बैटरी चार्ज करता है। तो ये मन की यात्रा उसको कहा मेडिटेशन। लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं कि क्या हम अपने सातों गुणों के आधार पर जीवन जी सकते हैं आज के युग में, क्या ये संभव है? क्यों नहीं है? दुनिया के अंदर जितनी भी महान हस्तियां हो गई उनकी महानता का आधार क्या था? उनकी बैटरी फुल चार्ज थी। चाहे वो स्वामी विवेकानंद को देखो, महावीर स्वामी को देखो, महात्मा बुद्ध को देखो, मदर टेरेसा को देखो, या आदरणीय दादी जी को हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, उनके व्यक्तित्व को कहते ही एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, एक चुंबकीय व्यक्तित्व था, एक ऐसी आकर्षण जो न चाहते हुए भी लोग उनके पीछे पीछे जाते थे। ये चुंबकीय आकर्षण कौन सा था उनके अंदर? वही सात गुणों का था, पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख और शक्ति, यही तो उनके जीवन में था। उनसे क्या होता है, उनसे आज के दुनिया के अंदर भी अगर ये सातों गुणों को लेकर के जीते हैं तो परिस्थिति को बदल सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं, समस्याओं को बदल सकते हैं, वातावरण को बदल सकते हैं, सामने वाली आत्मा की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। मुझे स्वामी विवेकानंद के जीवन से एक उदाहरण याद आता है कि एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए, जहां गीता शास्त्र का अपमान किया गया और एक भरी सभा में हंसी उड़ाई गई। सबसे नीचे गीता को रखा, बाकी सब शास्त्र ऊपर रखा, टॉप पर बाइबल को रखा और कहा आपकी गीता आउटडेटेड हो गई, हमारी बाइबल अभी टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला इंसान वहां होता था तो क्या करता था? हंगामा खड़ा कर देता था, लड़ाई झगड़ा आरंभ हो जाता था, खून खराबा शुरू हो जाता था या विश्व युद्ध भी हो जाता था। परंतु स्वामी विवेकानंद चार्ज बैटरी थे, उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए और कहा आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं? लोग हंसने लगे कि ये व्यक्ति को इतना भी पता नहीं है कि हमने सम्मान किया या अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े और नीचे से गीता को खींचा तो सारे शास्त्र गिर गए। तब उन्होंने कहा आपने तो गीता को आधार बना दिया, अगर आज दुनिया के अंदर गीता न हो तो दुनिया का कोई शास्त्र कोई धर्म टिक नहीं सकता। और सारा वातावरण बदल गया, सारी परिस्थिति बदल गई, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े कि ये कौन व्यक्ति है। और शिकागो वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ रिलीजन में भारत को एक ऐसा स्थान दे दिया कि आज 100 साल से ऊपर भी भारत का विशेष स्थान है। और उसके बाद लोगों ने गीता को समझने का प्रयत्न किया, कैसी क्या खास बात है इस गीता के अंदर जो ये व्यक्ति के जीवन में है। आज दुनिया के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को जितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया गया है उतना और किसी पुस्तक को नहीं मिला है, इतना महत्व हो गया। तो परिस्थिति बदल गई, लोगों की मनोवृत्ति बदल गई, वातावरण बदल गया। महावीर स्वामी जहां बैठ के जंगलों में तपस्या करते थे उस समय एक ऐसा ओरा क्रिएट हो जाता था आसपास भी कि उस वातावरण के अंदर कोई हिंसक प्राणी भी आ जाता था तो उस ओरा के संपर्क में आने से ही वो अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ करके अहिंसक होकर के बाजू में बैठ जाता था। ये खाली कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता है। महात्मा बुद्ध जब जंगल से गुजर रहे थे तो लोगों ने मना किया कि ये जंगल में अंगुली मल नाम का एक डाकू रहता है जो सबकी अंगुलियों को काट काट करके हार बनाकर पहनता है और लोगों को मार देता है, इस जंगल से मत जाना। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए चलते रहे, जैसे ही अंगुली मल सामने आया और उनसे ऐसी एक मीठा व्यवहार किया जो अंगुली मल वहीं झुक गया, एक अनन्य शिष्य बन गया, अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़ दिया। तो दूसरे को झुकाने का आधार भी ये 7 गुण है। ये इतने पावरफुल गुण है कि जब आत्मा की बैटरी फुल चार्ज होती है तो जीवन के अंदर समस्याएं नहीं आ सकती है, परिस्थिति विपरीत भी हो तो भी हमारे अनुकूल हो जाती है, वातावरण बदलने लगता है, व्यक्ति की मनोवृत्तियां बदल जाती है। ये अनुभव है, इसलिए कहा कि ये 7 गुणों को लेकर के जीवन को जीना बहुत आसान है और ही सुंदर क्वालिटी का जीवन बन जाएगा। लेकिन तब व्यक्ति सोचता है कि क्या सचमुच हम अपने व्यक्तित्व को परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इंसान का व्यक्तित्व कैसा है? एक बर्फ की शिला जैसा है, और ये बर्फ की शिला जिसका 90% भाग नीचे है 10% ऊपर है। आत्मा जो बीच में जिसके अंदर अथाह क्षमता है अथा शक्ति है, लेकिन वो सीमित हो गई है क्योंकि चारों प्रकार के जो संस्कार है उसके ऊपर हावी हो गए हैं। बुराइयों के संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार, खानदानी के संस्कार और संग के रंग के संस्कार। ये संस्कारों को अगर मिटाना है और आत्मिक क्षमता को बाहर ले आना है तो कैसे किया जाए? तो जैसे कहा जाता लोहे से लोहा कटता है, ऐसे संस्कार से संस्कार को भी खत्म किए जा सकता है। तो पांचवे प्रकार का संस्कार जो दृढ़ता का संस्कार है उसको जागृत करना पड़ता है। और दृढ़ता के संस्कार को कैसे जागृत करेंगे? उसके लिए पॉजिटिव थॉट एनर्जी चाहिए। और पॉजिटिव थॉट एनर्जी कहां से मिलेगी? आध्यात्मिकता से। तब ये आत्मा के भीतर की शक्ति को बाहर ले आ सकता है और ये चारों प्रकार के संस्कार को खत्म कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। जब आध्यात्मिकता है और दिशा प्राप्त होती है तो यही शक्ति जो बाहर आती है उसको हम सकारात्मक दिशा या ऐसे यथार्थ मार्ग पर लगाते हैं जिससे व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करने लगता है। जैसे साधारण नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बन सकता है वह आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर। और अगर ये शक्ति न हो, आध्यात्मिक ज्ञान न हो, तो क्या होगा? दिशा प्राप्त नहीं होगी और वो क्षमता डिस्ट्रक्टिव कार्य में यूज होने लगेगी। और व्यक्ति हिटलर भी बन सकता है या कोई टेररिस्ट भी बन सकता है। अर्थात दृढ़ता है, मरो या मारो, लेकिन रॉन्ग चैनलाइज्ड, गलत दिशा में चली गई है। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। वो आत्मा का निवास स्थान इस शरीर के अंदर कहाँ है? शरीर तो एकमात्र साधन है। मेडिकल साइंस द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मा का निवास स्थान हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है, लेकिन सरफेस मार्किंग है ब्रुकुटी के मध्य में, जहां व्यक्ति तिलक लगाता है। ये तिलक वास्तव में आत्मा की स्मृति का तिलक है। इसीलिए व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो चमड़े की चीज को बाहर उतारता है, फिर अंदर जाके तिलक लगाता है और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाकर हाथ जोड़ करके नमन करता है। ये प्रथा चलती आई है, लेकिन इसके पीछे की आध्यात्मिकता समाप्त हो गई। चमड़े की चीज को ही बाहर क्यों उतारा? वास्तव में उतारना है तो ये चमड़ा, वो चमड़ा तो उतार दिया, लेकिन ये चमड़ा, जिस चमड़े का अभिमान इंसान करता है, वो अभिमान का चमड़ा लेकर के मंदिर में नहीं जाओ, अभिमान के चमड़े को बाहर उतार दो। मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फल, ये मैं को बाहर उतार दो, फिर अंदर जाकर तिलक लगाया, माना मैं ये देह नहीं, मैं चेतन शक्ति आत्मा हूं, और फिर भगवान की मूर्ति के सामने जाओ, कितना श्रेष्ठ भाव है। लेकिन वो श्रेष्ठ भाव आज इंसान भूल गया है ना? तो आत्मा का स्थान इस शरीर के अंदर ब्रुकुटी की मध्य में है। लेकिन ओरिजिनली आत्मा कहां से आई? जो कहते जहां से आए वहां जाना है, कहां से आए और कहां जाना है, तीन लोक का चित्र है। नीचे है साकारी मनुष्य लोक, जहां ये पांच तत्वों की दुनिया है। उससे ऊपर एक और लोक है जिसको कहते सूक्ष्म देव लोक, और उससे ऊपर एक और लोक है जिसको कहते परलोक, परम धाम, शांति धाम। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं। किसी ने कहा उसको रूहानी दुनिया, किसी ने कहा सच खंड, किसी ने कहा हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड, किसी ने कहा निर्वाण, किसी ने कहा मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, लेकिन हम उसको कहते हैं अपना प्यारा घर। किसी ने कहा ब्रह्म महतत्व, ब्रह्म लोक, अपना प्यारा घर। जैसे घर होता है ना, व्यक्ति का विशेष लगाव होता है घर से। सारी दुनिया घूम के आए लेकिन अपने घर में आएंगे तो शांति का अनुभव करेगा। और इसीलिए आत्मा को भी कभी कभी अपना घर याद आता है। जब बहुत दुख शांति हो जाती है तो क्या प्रार्थना करते, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है ना, मोक्ष की कामना करते हैं। उसमें भी तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो परमानेंट मोक्ष चाहते हैं, कहते दुनिया देख लिया क्या है, हे प्रभु परमानेंट मोक्ष चाहिए, आना ही नहीं है, अभी वहीं रहना है। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते नहीं, जा करके थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होके फिर नीचे आए, है ना, ब्रेक चाहिए। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जो कहते जाना ही नहीं है, ये दुनिया बहुत अच्छी है क्यों जाना चाहिए। कहने का भावार्थ है, वास्तविक रूप में यह है कि परमानेंट जो जाना चाहते हैं मोक्ष, मोक्ष किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? वास्तव में मोक्ष आप चाहते भी नहीं। कैसे? आप कहेंगे बहन जी हम चाहते हैं ना, आप कैसे ये कह सकते। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि एक बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 50-60 फ्लैट्स है और उस बिल्डिंग के नीचे एक प्लेग्राउंड है। वैकेशन का टाइम है, सारे बिल्डिंग के बच्चे आकर उस प्लेग्राउंड में खेलते हैं। मान लो कि आप भी एक बिल्डिंग में रह रहे हो और आपका भी छोटा बच्चा है, वो भी नीचे जाने की जिद करता है, मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए। आप उसको मना कर दो, बेटा नीचे नहीं जाना, इतना तेरे पास खिलौने, ऊपर बैठ के खेलो, मान जाएगा? नहीं, नीचे जाना है। उस बच्चे को समझाओ कि नीचे जो खेल है वो बड़ा रफ खेल है, कोई धक्का देगा, गिरा देगा, चोट लगेगी, फिर क्या करेगा तुम, क्या कहेगा वो? कोई बात नहीं, जाना है, ध्यान रखूंगा, और लगी तो भी क्या हुआ, है ना? ठीक है, छुट्टी दिया आपने, गया नीचे, वो खेल आरंभ जो हुआ उस खेल में खेलने लगा, शुरू में तो जीत रहा था, सारा दिन खेल चलता रहा, दोपहर को भोजन के लिए भी बस आया खाया और भागा। जैसे जैसे शाम होने लगी, चीटिंग बढ़ने लगी, किसी ने जोर से उसको धक्का दे दी, गिरा दिया और चोट लगी, रोने लगा, आपने आवाज सुनी, क्या करेंगे? जाएंगे नीचे, जाकर के सारे बच्चों को कहेंगे अभी बहुत खेल लिया, सब अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मालूम है जब तक सब नहीं जाएंगे खुद का बच्चा भी आने वाला नहीं है। इसलिए सब बच्चों को घर भेजते, खुद के बच्चे को भी घर में ले आते हैं, साफ स्वच्छ करके मलम पट्टी लगाकर कुछ खाना पीना दिया, सो जाओ, सो गया। लेकिन दूसरे दिन जब वो खेल आरंभ होगा तो जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा, है ना? ठीक इसी प्रकार हमारे पिता ने भी हमें कहा बैठे रहो बेटे, नीचे जाके क्या करना, ऊपर इतनी शांति है, हमने भी क्या कहा, अरे जाना है नीचे, ऊपर शांति में बैठ के क्या करेंगे, है ना? और देखा कि जो नीचे गया एक भी वापस आया नहीं, माना नीचे का खेल बढ़िया चल रहा है, हमको भी जाना है, क्योंकि जो है वो तो है ही है और ऊपर से भी आत्माएं आ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर। सारा दिन ये खेल चलता रहा, अब संसार की भी शाम होने को आई, और जैसे शाम होने आई कलयुग के अंदर,
चीटिंग बढ़ गई। जब खूब चीटिंग होने लगी, कोई धक्का दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई चोटे दे रहा है, कोई दिल की चोटे दे रहा है, अनेक जख्म जब हो गए, तब हम भी चिल्लाने लगते हैं, हे प्रभु अब तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, रोना शुरू करते हैं। तब भगवान ने जो वायदा दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब इतनी चीटिंग बढ़ जाती है, परमात्मा के प्रति भी हृदय ग्लानी से भर जाता है, तब मैं भी आता। आकर कहते चलो बच्चे अब घर जाना है, बहुत खेल लिया, अब चलना है घर। इसीलिए अभी आप देखते हैं कि संसार के अंदर होलसेल मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया है। कहीं देखो तो भूकंप में हजारों लाखों मर रहे हैं, कहां देखो तो कोई छोटी चिंगारी लगती और कितने लोग मारे जा रहे हैं, कहां देखो तो कोई सुनामी लहरें आ रही है और कितने लोग मरते जा रहे हैं। तो होलसेल मौत का प्रोग्राम शुरू हो गया, क्योंकि जाना है घर और सबको जाना है, कोई एक दो को जाना ऐसा नहीं, सबको घर जाना है। फिर जब नई दुनिया इस संसार में पुनः रची जाती है, तो आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, आना और जाना यही तो खेल है। और ये खेल के अंदर हमें जीना कैसे है, तो ये सात गुणों को भरपूर करते हुए, आत्मा की बैटरी फुल चार्ज करके हमें अपने जीवन को जीना है, ताकि सबसे बढ़िया क्वालिटी का जीवन हमारा हो। तो ये है आत्मा का संपूर्ण परिचय।